आज एक विशेष अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, वो ये कि हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उनको कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। बताएं क्यों? क्योंकि देखिए, हम ज्वाइन बटन में विश्वास नहीं रखते हैं, हम सब्सक्राइबर से डायरेक्ट जुड़ते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे अवश्य जाएं, सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे कंटेंट बनाने में सहायता करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज शनिवार है और आज अंकित शाह है, स्वागत कर रहा हूं मैं अंकित शाह जी का। और अंकित शाह जी, जय श्री राम। अंकित जी, ये बताइए कि भाई मोदी जी अगर 400 सीटें लेके आ गए तो हमने पिछली बार डिस्कस किया है कि वो क्या क्या करेंगे, लेकिन ये जो जुडिशरी है उसमें आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। कोई जुडिशरी में कह रहे हैं कि साहब कि हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें हो रही। पहले नूपुर शर्मा वाले किस्से में भी आपने देखा था क्या हुआ था। तो इस जुडिशरी का कोई रिफॉर्म का कोई प्लान है, और यदि है तो एग्जीक्यूट कैसे होगा?
देखिये संजय जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है और सब कोई जानता है कि वो जो बेंच में ये जो जज है उनका नाम क्या है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कोई पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है कि आप जाके फट जाओगे उधर और बाकी की बेंच को भी साथ में ऊपर लेके जाओगे। तो आई थिंक ये फर्क हमें सब क्लियर करना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो मुझे लगता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपने पूरा ये पतंजलि का जो एपिसोड हुआ है आपने देखा है। और लैंग्वेज तो एक और बात है, लेकिन जो पूरा एक जिसको हम डीकोलोनाइजेशन जो हमारी थीम में हम बैठाते हैं डी डॉलराइजेशन के साथ, कि आपको समझना पड़ेगा कि वेस्ट जो है वो टॉप टू बॉटम तक सब कुछ कंट्रोल करता है। किस चीज को आप हेल्थ बुलाओगे, किस चीज को आप क्योर बोलेंगे, किस चीज को आप ट्रीटमेंट बोलोगे। ट्रीटमेंट के लिए जो रिसर्च होगा वो मटेरियल वैलिड होगा नहीं होगा, वो रिसर्च किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी कैटेगरी और स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, और रेगुलेशंस या गवर्नमेंट से कुछ कंट्रोल अगर मेडिसिन फील्ड में होना है तो वो किस हद तक का होना चाहिए। आई थिंक ये सब पूरा वेस्ट का टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट। तो आई थिंक जुडिशियरी तो बिल्कुल वो फॉलो करेगी जो स्टैंडर्ड्स वेस्ट ने सेट किए हैं, क्योंकि उसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। आई थिंक ये पूरा जो मैं बताता हूँ डीकोलोनाइजेशन का वेव, ये सारे सेक्टर्स में करना पड़ेगा, ये खाली एक सेक्टर से नहीं चल जाएगा। अब जहां तक जुडिशियरी का सवाल है, अब जुडिशियरी तो आप जानते ही हैं किस प्रकार की लैंग्वेज और जजमेंट्स आती है हर बार कुछ ना कुछ। एक दूसरा आपको पता है नॉनवेज वाला इशू भी चल रहा है, सबको नवरात्रि के दिन ही सब कुछ पोस्ट करना है, खाना दिखा रहे हैं सबको जैसे खाया ना हो दुनिया भर का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो रेड लाइन है और गवर्नमेंट भी जानती है कि इसका कुछ ना कुछ यू हैव टू रिफॉर्म थर्ड टर्म में। अब देयर इज नथिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वोट करने जाने वाले हैं वो इसीलिए वोट करने जाने वाले हैं क्योंकि उनको रिफॉर्म्स चाहिए, तो रिफॉर्म्स तो आने हैं थर्ड टर्म में। और जो प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि पहले सौ दिन बम गिरने वाले हैं, तो बम गिरेंगे राइट, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई चारा है, बचता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का ऑपोजिशन का करप्शन रहा, आप जानते हैं 2014 से ये सारे करप्शन के केसेस चल रहे हैं, चले ही जा रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर। और अगर जुडिशियरी नहीं दे पा रही है जजमेंट, अब 2024 आ गया, 10 साल हो चुके हैं, तो आपने क्या एविडेंसेस इकट्ठा किए और कैसे डेट के ऊपर डेट्स दिए हैं कोर्ट में कि ये सारे पॉलिटिशियंस वापस इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं जैसे एकदम निर्दोष और इनोसेंट हो। तो आई थिंक अब जो है जो मैं बताता हूँ कि सुदर्शन चक्र चलना चाहिए, मुझे लगता है कि अब करप्शन, आपने देखा है अरविंद केजरीवाल जी का जो जिस प्रकार से,
अरविंद
मुझे नहीं
केजरीवाल तो
लगता।
जेल में बैठ के भी कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही चलाएंगे, बताइए आप।
नहीं, वो जेल से भी क्या चलाएंगे बताएं, वो तो पता लग जाएगा
आज जुडिशरी
रिटायरिंग।
जो है लड़ लेती है, वो कहती है कि साहब कोई नहीं है, हमारा मैटर नहीं है, और बाकी हर छोटे छोटे मैटर में जो है वो इंटरफेयर करती है।
उनको बाकी सब कुछ हिंदू के मैरिज में वो दान कन्यादान होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी डिसाइड करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविज्म जो है ना जुडिशियरी का, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से, वही एकेडमिक्स से आते हैं बेसिकली, एकेडमिक्स में सारे लेफ्टिस्ट हैं। आज सुबह भी मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें यूपीएससी के प्रोफेसर बता रहे हैं कि नेहरू जी ने कश्मीर सॉल्व किया
नेहरू जी ने सॉल्व किया या कॉम्प्लिकेट किया
अच्छा कंपैरिजन करके बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने कतर वाला सॉल्व किया ना अपने रिलेशंस का एक्सरसाइज करते हुए, वैसे शेख अब्दुल्ला के साथ रिलेशंस एक्सरसाइज करते हुए नेहरू जी ने कश्मीर सॉल्व किया बड़ा अच्छा सॉल्व किया। अच्छा दूसरा दूसरा वो बता रहे हैं लेडी, ये यूपीएससी के प्रोफेसर है संजय जी, समझ रहे हैं आप।
यूपीएससी की प्रोफेसर नहीं होंगे ये तो, उसके वो जो अकेडमीज वगैरह चलती हैं उसमें पढ़ाने वाली कोई
नहीं
है
भाई एकेडमिक्स वाली। तो
नहीं।
ये समझना इसमें ये है संजय जी के ऐसी वाली कोलोनाइज्ड इकोसिस्टम से, अच्छा आप सोच सकते हो कि इकोसिस्टम को कितना कैश फ्लो मिलता होगा कि आज 2024 में भी नेहरू जी के बारे में बताना पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि नेहरू जी डेमोक्रेसी लेके आए भारत में,
वाह वाह वाह,
मैंने लिखा है
नहीं,
कि अगर नेहरू
अगर
जी नहीं
डेमोक्रेसी
लेके
ठीक
आते
से एक्सरसाइज होती तो, अगर ठीक से डेमोक्रेसी एक्सरसाइज होती तो नेहरू जी तो प्रेसिडेंट बनते ही नहीं, और ना फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते।
हाँ
प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो वो पूरा शो हुआ था 1946 में जून में या मई में, वो तो पूरा का पूरा महात्मा गांधी ने उसकी रिगिंग कर दी थी।
यही डेमोक्रेसी है, मतलब अगर नेहरू जी नहीं होते तो हमें सरदार पटेल जी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते और कश्मीर जो केस है वो बिगाड़ देते, नेहरू जी ने बड़ा अच्छा सॉल्व किया, ये इनका लॉजिक है आई थिंक संजय जी ये मतलब आप क्या क्या बोलोगे, मतलब इसको, मतलब देयर इज नथिंग टू कमेंट ऑन दिस पीपल, सबके सब राहुल गांधी जैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत हो चुका है, ये लोग बहुत गोल गोल घूम लिए हैं सब पॉलिटिशियंस, बहुत करप्शन कर चुके हैं, टोंटी चोरी कर चुके हैं, पंखा भी चोरी कर चुके हैं, अब
टोटी
एक्शन चाहिए। हाँ सबको किसी ने कुछ
टोटी
नहीं,
तो वही
घास भी खा गए हैं, घास भी खा गए राइट,
चारा चारा घास सब
हाँ
चल
चारा भी नहीं छोड़ा है, चारा नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, पंखा नहीं छोड़ा, कुछ कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, कोल भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, कोलगेट भी कर चुके हैं कुछ कुछ तो इनका इनका जो है, नाउ वी नीड जजमेंट्स, 2014 से चल रहे हैं केसेस, वी नीड जजमेंट, सीजेआई के पास, बेंच के पास, पता नहीं इन लोगों के लिए कभी टाइम नहीं होता है, बट अब आई थिंक ये आ चुका है टाइम, थर्ड टर्म है एंड देयर इज नो नीड टू शो एनी काइंड ऑफ लीनियंसी। तो ये जो कल्चर है ना एलिटिज्म वाला, मेरा मम्मी भी ये था, मेरा पापा वो था, आई थिंक दैट हैज टू एंड। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही ये रहा है कि जो कॉमनर्स हैं उनका सेल्फ एस्टीम उन्होंने आज इतना बढ़ा दिया है कि हम एलिट को क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, चाहे बॉलीवुड से लेके एकेडेमिशियंस से लेके ऑथर्स से लेके हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री पका के लिखते थे, पता है आपको रोमिला थापर जी एंड ऑल है, तो ये जो जो को महान बताया गया अब सब पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मैं मानता हूं इस गवर्नमेंट का कि आज G20 जिस प्रकार से Tier 2 और Tier 3 में लेके गए, जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से कॉमनर को छुआ है आज, तो सब कोई आज देख सकता है कि अगर कोई फेक न्यूज चला रहा है लीगेसी मीडिया में इमीडिएटली पकड़ पाएगा, अगर कोई लूटियंस एक्सपर्ट कुछ नरेटिव चला रहा है तो कॉमनर पकड़ लेगा, नहीं सुनने वाले ये कांग्रेस इकोसिस्टम की, मैं बता रहा हूँ, भले उनको कैश फ्लो मिलता हो। तो ये एम्पावरमेंट मोदी जी ने करी है और इसका ड्यू क्रेडिट उनको देना पड़ेगा हमें कि बॉलीवुड से लेके हर किसी के कपड़े उतर गए, ये काम अच्छे से हुआ।
ये तो चलिए एक बात हुई आपकी, दूसरी और मोदी 3.0 में जो दूसरा काम होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमी का। और आपने पहले 80-85 तक का तो प्रेडिक्शन कर दिया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि भाई
गोल्ड का
2024 में
जी।
मोदी 3.0 आएगा तो 80-85 तो जाना है। ये बताइए 2024 के एंड तक 1 लाख पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहले तो हम आपका प्रेडिक्शन दिखा देते हैं जो आपने किया
रेगुलेशन नहीं
था।
आएगा तो इजीली 80-85 तक जा सकता है टिल दिसंबर 2024, अगर कोई रेगुलेशन नया नहीं आया तो। जी
हाँ जी, तो आप जो है इसी 80-85 पर है या कि 1 लाख पर जाएगा, ये बताइए।
नहीं, 80-85 तक, क्योंकि वी डोंट नो, मल्टीपल कंट्रीज हैं, कहीं पे भी कुछ गोल्ड के ऊपर रेगुलेशन आ सकता है। अगर आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा, अदरवाइज 80-85 तो दिख रहा है दिसंबर 2024 तक, क्योंकि ब्रिक्स के नेशंस जो हैं वो गोल्ड से डी डॉलराइज कर रहे हैं, और जो मैं 2 साल से बता रहा हूँ कि यूएस इज अलाइंड ऑन डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, तो यूएस जो है वो बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहा है। बेसिकली पूरा वर्ल्ड डी डॉलराइज तो कर ही रहा है, यूएस जो है वो बिटकॉइन से कर रहा है। तो जब तक ब्रिक्स का कुछ रेडी नहीं हो जाता तब तक ये तो हमें, वी हैव टू बी ग्रेटफुल संजय जी के यूएस बिटकॉइन से कर रहा है। अगर यूएस भी गोल्ड से कर रहा होता डी डॉलराइज तो अभी तो 1.5 लाख पहुंच चुका होता गोल्ड, ठीक है।
अच्छा,
तो
गोल्ड कितना पहुंचाएगा मुझे ये
हमें
बता दीजिए।
बता रहा हूँ 80-85 दिसंबर तक तो है, अगर कोई रेगुलेशन नहीं आया, वही प्रेडिक्शन है, सेम है। सिल्वर भी उसके साथ, क्योंकि गोल्ड के पीछे सिल्वर भी ट्रेल करता है, और सिल्वर के जो है इंडस्ट्रियल यूजेज भी होता है, तो उस हिसाब से सिल्वर भी उतना ही प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेगा। क्लियर है इतना तो?
आज आज एक ये आई है, न्यूज़ आई है कि 18 कंट्रीज को आरबीआई ने रुपी में ट्रेडिंग करने के लिए गो अहेड दे दिया है।
जी
लेकिन इसमें एक समस्या अवश्य है कि इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तीन चार ही हैं, न्यूजीलैंड है, रशिया को अगर मान लें उसमें तो G20 वाली मान लें, सिंगापुर है और यूके है, बाकी सब अफ्रीकन कंट्रीज और छोटी कंट्रीज हैं, म्यांमार और ओमान जैसी।
देखिए, नहीं
तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है?
बहुत इंपॉर्टेंस है इसका संजय जी, क्योंकि ये हमारा तो स्टेटेड गोल है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ओके, ये हमारा स्टेटेड गोल है। 10 साल के अंदर कैसे भी करके हमें इसको, करेंसी को उतना एक्सपांड करना है, क्योंकि यूपीआई और रुपए कार्ड्स वाले सिस्टम तो हर जगह स्प्रेड हो ही रही है।
अच्छा,
अब जितना
एक एक एक
जितना
मिनट एक मिनट, मैं आपको यहीं टोक रहा हूँ, क्योंकि ये भी अनाउंस कर दिया, परसों आया था ये अनाउंसमेंट कि यूएसए में भी यूपीआई को लागू करने जा रहे हैं।
जी, तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सिस्टम अब है ही ऐसी, अगर मतलब प्रधानमंत्री जी, आई थिंक बिल गेट्स का विजिट था, समबड़ी समबड़ी बिग जो आए थे उनको यूपीआई दिखाया भी जा रहा था, और इनफैक्ट जो उनके एम्बेसडर हैं, बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने यूपीआई इस्तेमाल करके भी देख लिया, और G20 में भी उनको एक डेमो दिखाया गया था। तो आई थिंक भारत का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, और 10 साल तक का गोल है कि कैसे भी करके जितना हमारा जो ट्रेडिंग का माइट है, हमारा जितना मैन्युफैक्चरिंग का माइट डेवलप होगा, उसके इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में रूपी का एक्सपांशन होना चाहिए। आई थिंक मालदीव से भी अभी बात चल रही है रूपी ट्रेड के बारे में, तो छोटा सा मालदीव जो अभी टूरिज्म के लिए है।
मालदीव मालदीव के दिमाग ठीक हो गए क्या कि नहीं हुई?
बुइजू गवर्नमेंट जो है शायद थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी तो यही है, इस ज्योग्राफी के बाहर नहीं जाने वाले हम, तो आई थिंक ये भी हो जाएगा, नॉट अ सीरियस इश्यू एनीवेज। बट ये जो ईरान में हम देख रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच जो आप जानते ही हैं, वो जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने टॉक पे, चालू टॉक पे बता दिया था कि इवेंचुअली गाजा क्लोज, गाजा जो है उसका एक्सपांशन होना ही है, वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो ही जाएगा। तो कुछ कुछ सिग्नल्स तो हैं, अब ईरान के ऊपर है कि वो किस प्रकार का रिटेलिएशन करता है, अगर ईरान ने ऐसा कोई रिटेलिएशन किया जो मेनलैंड इसराइल के ऊपर ऑफिशियल अटैक की कैटेगरी में अगर आप डाल सकते हो, अगर ऐसा वाला हुआ तो फिर तो देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप द वॉर। ओके, अगर ईरान ने कुछ विजडम दिखाया और कुछ साइड में छोटा मोटा कुछ किया तो शायद बच भी जाए, बट इसमें से तो नहीं बच सकते। अगर सीरियस वाला अटैक हुआ तो फिर फुल फ्लेज वॉर ये हो सकता है, क्योंकि यूएस के सारे बेड़े पहुंच, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे हम इसे, बिकॉज आप जानते ही वो चारे पॉकेट्स जो मैंने बताई दिए थे कि यूक्रेन, पीओके, ताइवान और ईरान इसराइल, क्योंकि ये चारों पॉकेट जो आप जानते हैं सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी पाउंड और डॉलर के लिए आर्टिफिशियली ये हॉटस्पॉट खड़े किए गए थे, तो अब क्योंकि जरूरत नहीं है तो इसको क्लोज होने हैं चारों के चारों। तो उसकी भी झलकियां दिख ही रही है आपको चाइना में। एक जो मैंने बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि एलओसी का जो सॉल्यूशन है, चाइनीज वाली जो एलएसी है उसका सॉल्यूशन जो है वो एलओसी पे है। तो अगर आप वो डेट्स उठा के देख लें जो वर्किंग जो ग्रुप की होती है चाइना और भारत के बीच, तो वो सारी की सारी कश्मीर वाली डेट्स हैं। वो मैंने ट्विटर पे डिटेल में डाला है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं एटलीस्ट लास्ट चार तो मैंने ट्रेस की, क्लियर पाकिस्तान और कश्मीर के साथ लिंक्ड है जो चाइना के साथ मीटिंग्स हुई है। मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने डिटेल के साथ दिया है। तो आई थिंक बहुत साफ है कि बीजिंग को जो भी सॉल्यूशन बीजिंग के साथ एलएसी का होना है उसमें एलओसी और पीओके का एक बड़ा रोल है। और वो जो स्टेटमेंट्स जब अरुणाचल पे आ रहे थे दोनों साइड से, जब उन्होंने नए नाम दिए, यहाँ से रिटेलिएशन हुआ कि नहीं हम तो नहीं मानते, और बीच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जो हुआ 24 मार्च का, जो राजनाथ सिंह जी ने बोला कि पीओके आएगा और खुद से ही आएगा, खुद से चल के आएगा पीओके,
और ये भी कहा कि हम घुस के मारेंगे।
हाँ, तो ये जो और बड़े अचरज की बात है संजय जी, उसी दिन पाकिस्तान से स्टेटमेंट आता है 24 मार्च को ही कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं।
भारत तो नहीं करना चाहता ना।
नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने विरोध नहीं किया उस स्टेटमेंट का और बोला कि हमें ट्रेड करना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो है उसी के साथ पैरेलल में अफगानिस्तान के साथ जो चाइना का बढ़ रहा है कोलैबोरेशन, वो देखते हुए मुझे लगता है कि वो जो सीपैक अथॉरिटी जो क्लोज कर दिया गया लास्ट ईयर, उसके बाद अब नहीं लगता कि कुछ सीपैक का कुछ कुछ भी रिलेवेंस बचता है, क्योंकि सबको क्लियर समझ में आता है कि पीओके वापस आते ही वो एक्सेस फिर चाइना को नहीं मिलेगा, तो उनको अफगानिस्तान वाला जो रूट है वो एक्टिवेट करके वहां से जहां जाना है वहां जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये साफ है।
चाइना की तो और भी समस्या हो रही है ना, क्योंकि चाइना जो है वो कह रहा है कि भाई टेस्ला क्यों जा रहा है और एप्पल क्यों जा रहा है इंडिया में, और वो फिर तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब क्या है ऐसा नहीं, हमारे यहाँ स्किल्ड इंजीनियर नहीं है इंडिया में, आपको परेशानी होगी, आप हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, उनका दिल टूटा जा रहा है। और हमारे किसी पड़ोसी का दिल टूटता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार तो फिर हमें दुख होना चाहिए ना।
हमें बड़ा दुख है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना से निकल रही है।
और तो ये आपको ये भी ध्यान होगा कि फिच ने जो है वो चाइना की रेटिंग डाउन कर दी है।
हाँ, और अभी आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि जेनेट येलन जाके आए हैं चाइना, और विजिट के बाद
जेनेट येलन न केवल जाके आए हैं धमका के आए।
हाँ नहीं, जेनेट येलन ने आने के बाद स्टेटमेंट दिया है डीकपलिंग के ऊपर, तो शी जिनपिंग की जो दोनों कंडीशंस थी वो उन्होंने फुलफिल कर दी। पहली कंडीशन थी कि अमेरिकन स्टूडेंट्स को चाइना में भेजें, तो फरवरी में एक बैच चाइना जाके आया, और दूसरी शी जिनपिंग की जो नवंबर विजिट की कंडीशन थी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो हुई थी वो ये थी कि आप टेक कंट्रोल्स टेक पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हटा देंगे, तो उस पर एक माइनर सिग्नल मिल रहा है यूएस से, जहां पे बोला जा रहा है कि हम हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं वो हटाने जा रहे हैं। तो आई थिंक शी जिनपिंग की दोनों कंडीशंस उन्होंने मान ली हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि डीकपलिंग कोऑर्डिनेटेड तरीके से होगा, जैसे चाइना के टर्म्स पे। तो ये जो जिसको डी डॉलराइजेशन को डीकपलिंग बोलो, डी रिस्किंग बोलो, उनको जो नाम देना है दे, क्लाइमेट चेंज बोलो या एआई बोलो, राइट? चाइना से डीकपलिंग तो तय है और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होगा क्योंकि दोनों कंडीशंस मान ली गई हैं। और कोई चारा ही नहीं था
भाई
संजय जी मानने के अलावा, यूएस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
चलिए, तो अब ये सब होने के बाद में और मोदी 3.0 के बाद में, तो जुडिशियल रिफॉर्म की हमने बात कर ली, जुडिशियल रिफॉर्म के साथ साथ एजुकेशनल रिफॉर्म का क्या करेंगे? हर जगह तो लेफ्टिस्ट बैठा हुआ है, हर जगह तो वो अपना नैरेटिव चला रहा है।
आई थिंक संजय जी, मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट 100 डेज वाला जो प्लान है, जो पता लगेगा,
देखिए,
इसमें
कल कल आ रहा
एडेप्टेशन
है,
होगी।
कल कल इनका मैनिफेस्टो आ रहा
मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो को भी टाइम है, संकल्प पत्र बोलते हैं इसे।
है,
अच्छा,
संकल्प
तो
पत्र कल आ रहा है, कल 8:30 बजे सवेरे लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री उसको,
जी, तो
उससे
फर्स्ट
काफी कुछ
हंड्रेड
आइडिया
डेज
मिलना
में,
चाहिए।
हाँ, उस पर से आइडिया आएगा। और नहीं, दो चीज तो मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है, वन इज करप्शन, सेकेंड इज जुडिशियरी, एंड थर्ड इज एजुकेशन। ये तीनों तो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे कि इस पर तो एक्शन होना ही है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर मुझे लगता है ये पहले ही टर्म में अच्छा खासा बजट एलोकेट हो जाएगा। और जो आपने जो कंसर्न बताया लेफ्टिस्ट या लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का, जो एकेडमिक के कैंपस में सारे एक कार्टल बना रखा है, मुझे लगता है कि एकेडमिक्स का जो फॉर्मेट ही वैसा चेंज हो जाएगा कि वो ऐसे ही काउंटर हो जाएगा लेफ्टिस्ट एग्जिस्टेंस जो है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक बेस वाला कुछ मुझे लगता है कि उतना इम्पोर्टेंस फिर रहने नहीं वाला, बहुत ज्यादा स्किल्स बेस्ड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह आज भी गेमर्स के साथ सुबह एक मीटिंग की है, ऑनलाइन गेमर्स के साथ, जिस पर आई थिंक मैंने सितंबर 19 के आसपास ट्वीट किया था कि गेमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करिकुलम में हो सकता है, तो वो जो गेमर्स थे वो प्रधानमंत्री जी को बता रहे थे कि गेमिंग को एक खराब माना जाता है क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि इससे एजुकेशन को अफेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री जी का भी जवाब यही था कि हमें इसका रेप्यूटेशन बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को डांसिंग वाले एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है, सिंगिंग वाले में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक सेंचुरीज का टाइम लगता है रेप्यूटेशन बिल्ड करने में। तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे इनपुट्स मंगवाए हैं, वो पूरी टीम से जो ऑनलाइन गेमिंग वाले जो गए थे वहां, क्योंकि एक जेन्युइन कंसर्न कुछ लोगों का ये था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग पे आपने टैक्सेशन क्यों लगाया हुआ है, तो ये कुछ कुछ महीने पहले ये आया था, क्योंकि गैम्बलिंग एक तरह से गैम्बलिंग का एक नया डोमेन विद इन ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे शुरू हो चुका था, जिसको कर्व करना जरूरी था। बिल्कुल वैसे आप देख रहे हैं कि जुडिशियरी में जैसे ही पतंजलि को ये बोला गया, उसके तुरंत बाद आज सुबह जो है वो क्या नाम है, बोनवीटा और दूसरा हेल्थ ड्रिंक वाला जो उनका कैटेगरी है, तो ई कॉमर्स पोर्टल्स को बोला गया है कि उनको ये कैटेगरी से निकालो, बिकॉज दीज आर नॉट हेल्थ ड्रिंक्स, राइट? वो लेबल नहीं दगा सकते। इनफैक्ट 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद जिस जनरेशन ने बोनवीटा, हॉर्लिक्स और ये सब रेगुलर तौर पे इस्तेमाल किया बिना जाने के कंटेंट में शुगर लेवल क्या है या उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, आई थिंक धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि इसमें भी डीकोलोनाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, पैकेज फूड्स में बहुत ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हेल्थ इंपैक्ट मेजर नहीं किया गया है, सीधा उसको इंडस्ट्री बना दिया गया और फिर चलता रहा। आई
जी
थिंक अगले एक्शन आएगा, पतंजलि पे हो चुका है तो अब जुडिशरी बोल भी नहीं सकती कि आप एक्शन कैसे ले रहे हो।
हाँ, वो तो दिख रहा है ना कि जिस तरह से पतंजलि पे इन्होंने किया है, बिल्कुल पूरी तरह से जो उनका बायस है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस तरह के बायसेस जो हैं वो और भी जगहों पर हैं। अकेडमिक्स की जब हम बात करते हैं तो अकेडमिक्स केवल खाली इनके कैंपसेस की बात नहीं है, जो रिफॉर्म्स करने थे वो भी बहुत स्लो रहे हैं। अब जाके 10 साल होने के बाद एनसीईआरटी में कुछ जो है वो हिस्ट्री इत्यादि के सोशियोलॉजी के चैप्टर्स में अब कुछ सब्सटेंशियल चेंज किए, अब जाके आगे इसको प्रोसेस को एक्सेलरेट होना चाहिए ना।
जी बिल्कुल, ये
और भी
संजय
मैं
जी
आपको बताऊं कि
मेरा
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आज तक लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं और लेफ्टिस्ट को हटाया भी नहीं गया।
दे आर कंटिन्यूइंग विद दैट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन संजय जी
और
मुझे
उसका
लगता है
एक
कि
कारण ये भी
मेथडोलॉजी
है,
चेंज हो जाए।
उसका एक कारण और भी है, वो ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, क्योंकि मैं तो ब्यूरोक्रेसी में ही पला बढ़ा हूँ, 35 साल मैंने ब्यूरोक्रेसी में निकाले, तो 35 साल में मैंने देखा कि भाई आज भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो या तो पोर लेफ्टिस्ट है या फिर लेफ्ट लीनिंग है, और या फिर वो चुप रहती है क्योंकि ये पीयर प्रेशर डालते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी का भी रिफॉर्म बहुत आवश्यक है।
जी संजय जी, मुझे लगता है जहां तक ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गोल है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मुझे लगता है एक वक्त आएगा जहां पे अगर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि हम अफ्रीका भेज सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा ऑफिसर्स हैं उनको, क्योंकि अफ्रीका को एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। तो एक तरह से जो ग्लोबल साउथ का एक जियोपॉलिटिक्स भी हो जाएगा कि भारत ने इतनी मदद की, और जो हमारा एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोगों को देखने के लिए लोग रखने पड़ते हैं, इस तरह का मैनेजमेंट शायद जो पुराना चल रहा था उसको हम टेक्नोलॉजी से भी विजिट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेसी को आप अफ्रीका एम्पावर करने भेज सकते हो, ये हो सकता है,
अरे
सजेशन है, लेट्स सी। नहीं, वहां जरूरत है, सच में जरूरत है ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की।
वो बहुत सारी चीजें हमसे ले ही रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं। शॉर्टलिस्ट वगैरह करनी हो, कहीं मेरी आवश्यकता हो, क्योंकि मैं तो अंदर से देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कौन है लेफ्टिस्ट। और वो बड़े मजे से जो लोग हैं ना, वो मुलम्मा चढ़ा के और इस सरकार में भी अच्छे अच्छे पद लेके और वहां पे बैठे आराम से अपने मौज कर रहे हैं, और नरेटिव वही चला रहे हैं अपना। आप जो है
जी जी बिल्कुल
वही,
बिल्कुल,
अगर 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 आप आईएएस आईपीएस इत्यादि के जो ग्रुप्स हैं या सर्विसेज के जो ग्रुप्स हैं ना, उसके अंदर जाके देखिए तो आपको ये सब पता चल जाएगा। ये काम तो करवाना चाहिए ना। देखिए चाणक्य की नीति कैसी थी, चाणक्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इंटेलिजेंस बेस्ड था।
जी बिल्कुल। तो बॉटम अप इनपुट्स जाते थे। आई थिंक इस इलेक्शन में ये हुआ भी है संजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले जयशंकर जी से मिला था, मैं बता रहा हूँ, तो दे आर कंप्लीटली आईज एंड ईयर्स टू द ग्राउंड। तो वो फीडबैक ले रहे हैं सभी से कि क्या चल रहा है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक, एज उनका क्लियर है कि अब थर्ड टर्म है तो बड़े मैसिव रिफॉर्म्स आने हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट फीडबैक। तो वो लोग पॉलिटिशियंस जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो लोग भी घूम रहे हैं सारी जगह, एंड दे आर ट्राइंग टू फील कि मासिस क्या कहना चाह रही है, व्हाट इज द ऑन ग्राउंड डिमांड्स। क्योंकि सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आज मैं सुबह देख रहा था कहीं पे लिखा हुआ था कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अम्बेडकर जी आएंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल पाएंगे, राइट? तो मेरा भी यही मानना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में
तो
अगर,
कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का प्रोविजन आर्टिकल 368 तो अंबेडकर जी उसमें डाल के गए हैं।
हाँ नहीं संजय जी, इसमें हमें यह समझना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जो ऑफिशियल है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई आपको ये सारे अमेंडमेंट्स करने ही पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाके वो वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है, राइट? तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट स्पीक अहेड ऑफ टाइम, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो अभी वोट डालने जा रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज सामने से मैंडेट दे रही है आपको और उनका मानना है कि भाई वी वांट सर्टन काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, तो उस पर विचार बिल्कुल होना चाहिए, वो इलेक्टेड लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक इस पर भी जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब लोगों की खुद की जो जहां पे वो एमपी एमएलए है वहां से जब जाती है डिमांड, आई थिंक दे विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट एज अ फीडबैक। तो लेट्स सी, इट इज पॉजिटिव। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 साल में जो डिलीवरी दी है, 7 नए 7 नए IITs एम्स दिए हैं, जिस प्रकार से मुद्रा योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंडिंग की है, उज्ज्वला योजना में जिस प्रकार से काम हुआ है, टॉयलेट पर जिस प्रकार से वर्क हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस प्रकार से वर्क हुआ है, नंबर ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, जिस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज में दिया है, इतने नए एयरपोर्ट्स बने, सीधे डबल हो गए 2014 से। आई थिंक जिस प्रकार से ऑन ग्राउंड वर्क हुआ है, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर जो स्टेट, किन स्टेट को हम वीक समझ रहे हैं बीजेपी को वोट करने में, हो सकता है बंगाल और तमिलनाडु से सरप्राइज रिजल्ट्स आए।
अब वो तो लग रहा है ऐसा। और इससे पहले कि हम दर्शकों के प्रश्नों पर चले, मैं आपसे एक विशेष टिप्पणी चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक एजेंडा दिया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक वेल्थ सर्वे करेंगे, और वेल्थ सर्वे करने के बाद में वो सबको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका क्या अर्थ है? एक, लेकिन इससे पहले कि आप ये टैकल करें, मुझे बार बार पीछे से प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, मैं पूछता हूँ आपसे, सेंसेक्स कितना जाएगा?
इलेक्शन रिजल्ट के बाद,
बाद
जी इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप इजीली इसको 85 तो इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड के अगर बीच में वो डिप्स आ गए, क्राइसिस वाले, वेस्टर्न क्राइसिस वाले, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, जापान के प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस गए थे और साथ में जेफ बेजोस और जो बड़े बड़े नाम है, जेमी डिमॉन, जेरोम पॉवेल, वो सब उस मीटिंग में थे। तो वहां पे कुछ डिसाइड हुआ होगा, क्योंकि आप जानते ही, मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है कि क्राइसिस जो है वो बैंक ऑफ जापान की एक्शन के साथ स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे, राइट। तो जब वो डिप्स आएंगे तो देर विल बी डिप्स, उसके लिए रेडी होना चाहिए। जहां तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो प्रश्न है कांग्रेस का, देखिए उनका फॉर्मूला वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो वेल्थ डिप्लीशन का फॉर्मूला है उनका, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिप्लीशन। कंगाल कंगाल करने का, आपको भिखारी बनाने का जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने कर्नाटका में किया, जहां जहां उनकी गवर्नमेंट आती है वहां भिखारी बनाने का जो उनका मैनिफेस्टो है, इससे बचे, वरना वही हालत होनी है जो राहुल गांधी जी की है। मानसिक तौर पे जो पता नहीं क्या क्या उनका स्पीच राइटर कौन ही है, वो सीक्रेट स्पीच
नूब
राइटर। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बताया, नूब नूब है, न्यूजेंस है, नॉनसेंस है, एन से बहुत कुछ उसको बोल सकते हो, जो भी एन से बोलना है, सब न्यूट्रल, नॉनसेंस, निल, नेगलिजिबल, जो बोलना है। अच्छा, ये लोग ऑपोजिशन वाले एक नया इशू ट्राई करते हैं क्रिएट करने की, जो दूसरा एक समाज है गुजरात से, वहां से फालतू का एक नया इशू इन्होंने क्रिएट किया है कि कास्ट डिफरेंशिएशन, ये वो राजपूत समाज
हाँ,
देश।
वो क्या है साहब, वो कड़वा पटेल राजपूतों में झगड़ा करा के और पूरा नैरेटिव जो है वेस्टर्न यूपी तक चला दिया, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी चला दिया, बड़ा
बहुत ही
जोरदार मामला
बहुत ही
चला है।
वाहियात, बहुत ही वाहियात प्रकार की पॉलिटिक्स है संजय जी, कि देश को तोड़ने की ये जो राजनीति है जो अपोजिशन पार्टी चलाती है, उनकी सारी स्पीचेस में वो कास्ट की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस कराएंगे, सबको वापस तोड़ेंगे, ये करेंगे, हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पता नहीं क्या, अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे शायद, वो दूसरों को दे ना दे, वही काम सबसे पहले कर लेंगे। तो ये बहुत ही वाहियात इन्होंने इशू रेस किया है। और राजपूत समाज कोई ऐसा नहीं है कि उनको नहीं समझ में आता किस प्रकार की ये पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता कोई बहकावे में आने वाला है। प्रधानमंत्री जी के काम पे वोट होने हैं और एक अखंड भारत के लिए हमें एक प्रचंड बहुमत देना है, और हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कहीं नहीं मिलने वाले आपको ये पॉलिटिशियंस, मैं बता रहा हूं, जो 12-12 घंटे आपके लिए काम करते हैं। मैं वापस रिपीट कर, इनफैक्ट मैं खुद अब तो देख के आया, मैं जयशंकर जी से मिला, तो अगर आप स्केड्यूल सुनोगे संजय जी, यू विल बी शॉक्ड कि इतने घंटे ये लोग काम करते हैं, सब कुछ साइड पे रख के, पूरी फैमिली को साइड पे रखा हुआ है। और उसमें अगर आप राजपूत और पटेल और ये सब निकालने हो, ये बहुत ही गंदी राजनीति, नया भारत इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहता है। ना राजपूत समाज भी चाहेगा, ना पटेल समाज चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो वाहियात प्रकार के जो नरेटिव्स चलाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास मीडिया का इकोसिस्टम है, तो बस फैलाते रहते हैं। और अब तो उनको पाकिस्तान के भी मिल जाते हैं, वो एक एक रुपए में काम करने वाले जुबैर जैसे ट्वीटर्स, वहां से भी मिल जाते हैं इनको, कहीं से भी, गल्फ से मिल जाते हैं इनको। तो आई थिंक ये पूरा जो एक नेक्सस है अब एक्सपोज हो चुका है। जब कोई विजन नहीं है तो समाज को तोड़ने का ऑब्जेक्टिव बस, कि हम ये सेंसस करा लेंगे, फिर तुमको वो बेनिफिट दिलवाएंगे, तुम्हारा वोट का बंडल बनाएंगे, तुमको गरीब रखेंगे। इतने सालों से इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या करा है? जब ये वोट लेते हैं, इनको इनको बताते हैं कम्युनिटी को कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल मत भरना, दादागिरी करना। दिस इज द ऑफर टू द मुस्लिम कम्युनिटी कि हमको वोट दो और तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल मत भरना। दिस इज ऑल, दैट्स द ओनली थिंग,
आइए
बस, और
आइए
कुछ
चलिए,
ऑफर में और कुछ नहीं है, यही है बस।